पांचवा भाग, उर्मिला का चरित्र चित्रण। उर्मिला साकेत की प्रधान नारी पात्र है, जिसे कवि ने पुनरुत्थान की प्रेरणा से चालित होकर अपनी सहानुभूति दी तथा उसके व्यक्तित्व को जगाने एवं संवारने का प्रयास किया। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में उर्मिला को लेकर कवि ने इस प्रश्न पर सोचना आरंभ किया कि नारियों की समस्या क्या है, पतियों के वैराग्य के साथ उसका क्या संबंध है तथा नवयुग की दृष्टि से इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। नारी समाज की आधारशिला कही गई है। साकेत के प्रणेता ने नारी को देवी के रूप में स्वीकार किया है। नारी पुरुष की पूरक है, उसकी भोग्या मात्र नहीं। इस तथ्य को साकेतकार ने प्रकट किया है, लेकिन उसने इस बात पर बल दिया है कि पारस्परिक मधुर संबंधों में ही दाम्पत्य स्वर्ग का सच्चा सुख निहित है। जिस समय उर्मिला ने अपने उज्ज्वल ललाट में सिंदूर बिंदु धारण किया था, उसी दिन की नववधु वह सदा बनी रही। सीता की तरह वह भी पति परायणता धर्म को जानती थी, लेकिन उसने पति लक्ष्मण के आराध्य युग की सेवा में बाधक नहीं बनना चाहा। यह बात उसके चरित्र की बहुत बड़ी महत्ता का बोधक है। सीता को साथ लिए दोनों राजकुमार जब वनवास को निकले, उस दिन वधु उर्मिला राजप्रसाद के किसी एकांत कक्ष में वृंतच्युत कलिका की भांति धूल में लौट रही थी। उस दिन के उस विश्वव्यापी विलाप के भीतर इस विदीर्ण मांड क्षुद्र तथा कोमल हृदय के असह्य शोक को किसने देखा था। उर्मिला का विषाद, जो साकेत का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कहा जाता है, उसके चरित्र का केंद्र बिंदु है। कवि ने उर्मिला की साधनामयी जीवनी चित्रित की है। उर्मिला के चरित्र के कुछ विशेषताएं थीं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, शिक्षा। जिस समाज में नर के साथ नारी भी शिक्षित होगी, वह समाज उन्नतशील होगा। इस बिंदु पर कवि की दृष्टि थी। उर्मिला चित्रकला में अत्यंत पटु थी। उसने अभिषेक का काल्पनिक चित्र बनाकर लक्ष्मण को क्षण मात्र में आश्चर्यचकित कर दिया। चित्र भी था चित्र और विचित्र भी, रह गए चित्रस्थ से सौमित्र भी। प्रथम सर्ग से अपने उपवन में वह पुरबाला साला खुलवाकर शिक्षिका बनने का भी विचार प्रकट करती है। मैं ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदना में, सखीपुर वाला साला खुलवा दे क्यों न उपवन में। नवम सर्ग से दूसरा, वासनेत्तर महत्व। नारी भोग से दूर रहकर अपने व्यक्तित्व को महिमान्वित बना सकती है। उर्मिला का वासना विरत जीवन कर्तव्य पालन एवं धर्म के जिस उदात्त भाव भूमि पर प्रतिष्ठित है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए अपर्याप्त होगी। वह समग्र नारी जाति को वासना से दूर कर्तव्य परायण उत्कृष्ट सामाजिक जीवन का संदेश देता हुआ धर्म का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जिससे भारतीय संस्कृति गौरवान्वित हो उठती है। वह कहती है, मधु हंसने में लवण रुदन में, रहन कोई भूल में, मौज किंतु मझधार बीच है, किवा है वह कुल में, दृगम्बुआद कुल में। नवम सर्ग से तीसरा, कर्तव्य बोध। जीवन की सार्थकता कर्तव्य के सम्यक बोध और पालन में है, इसे भारत की नारी पूर्ण रूप से जानती है। वनवास के समय उर्मिला लक्ष्मण के मन के भाव को समझ गई, अतः भातृ प्रेम में बाधक नहीं बनी। अपने हृदय में 14 वर्ष का एकनिष्ठ विरह झेलने का संकल्प कर लिया। उसने संकल्प में पति के कर्तव्य पालन के महत आदर्श की झंकृति मिली। उर्मिला ने उस समय पति को धर्म की राह में अग्रसर करने में सहायक बनना ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझा। कितने त्यागमयी और उदात्त भावना थी। नारी के कर्तव्य बोध की वह चरम सीमा पर पहुंच गई। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, उर्मिला अवध ने वन किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। नवम सर्ग से। अपनी विरह से वह किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए कहती है, रोती है और दूनी निरख मुझे दीन सी तीन सांसें। होते हैं देवर श्री नत हत बहने छोड़ती हैं उषा से। आली तू ही बता दे इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊँ। दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शक्ति दूँ और पाऊँ। चौथा, साहस और प्रेरणा प्रदायी का रूप। आज की नारी पुरुष को प्रत्येक क्षेत्र में योग देने में तत्पर दिखाई देती है। भारत की संस्कृति परंपरा इस बात की द्योतक है कि यहाँ की रानियों ने सदैव पुरुषों की नूतन प्रेरणा और दृढ़तर उत्साह प्रदान किया है। उर्मिला भी कहती है, मेरी चिंता छोड़ो मग्न रहो नाथ आत्मचिंतन में। बैठी हूँ मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में। पांचवा, दाम्पत्य प्रेम। उर्मिला पद के समान ही श्रेष्ठ भावों से भरा हुआ हृदय रखने वाली रमणी है। अतः पद के गौरव के अनुकूल पुरुष की महत्ता का वर्णन करते हुए कहती है, खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती है एक तुम सा पात्र हम। आंतरिक सुख दुख सदा जिसमें धरे, और निज भव भार क्यों हल्का करें। दंपत्य विज्ञान का इससे मधुर और कौन सा व्याख्यान हो सकता है। लक्ष्मण ने एक बार प्रसंग वर्ष जैसे ही कहा, किंतु मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ। तो उर्मिला ने तत्क्षण तर्क पूर्ण उत्तर प्रस्तुत कर दिया, दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी कहाना इसलिए। एक ओर वह पति की श्रेष्ठता को सुरक्षित रखती है और दूसरी ओर दासी न बनने की बात बड़े ही मधुर ढंग से कहती है। अंततः लक्ष्मण को प्रणय रस में निमग्न होते हुए कहना पड़ा, तुम रहो मेरी हृदय देवी सदा, मैं तुम्हारा हूँ प्रणय सेवी सदा। साकेत में उर्मिला का चरित्र सीता से भी ऊंचा उठ गया है। वहीं साकेत की कथा की केंद्र बिंदु का आधार है। सारा कथानक उसके आंसुओं से गीला है। साकेत की उर्मिला सौंदर्य की साकार प्रतिमा परिहास प्रिय कला निपुण प्रेम प्रगत्या आदर्श पत्नी त्याग और बलिदान की भावना से युक्त करुणा की प्रतिमा एवं देशाभिमानी राष्ट्र सेविका आदि सभी कुछ है। डॉक्टर कमलनाथ पाठक ने उर्मिला के चरित्र विकास को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है। प्रथम में विवाह आदर्श गृहिणी है, त्यागमयी है एवं विरह से दुखी है। उसका प्रेम अभी लक्ष्मण से एकांत रात्रि के अंधेरे में अपनी स्मृति की अपेक्षा करता है। द्वितीय स्थिति में यह भाव में नष्ट हो जाता है। तृतीय स्थिति में उसका प्रेम और सतीत्व अपनी धर्मनिष्ठा में वियोग साधना करता है। उर्मिला नारी है, उस पर भी एक पत्नी के लिए सबसे महान दुख पति वियोग होता है। उर्मिला के चरित्र की उदात्तता उनके निजी विषाद से उत्पन्न आंसुओं के बहने से कम हो गई है। श्री गिरीश जी लिखते हैं कि हम उसी उर्मिला को प्यार कर सकते हैं जो रघुकुल में उपस्थित समस्या का समाधान कर सके और उसी समाधान में अपने जीवन का विषाद का समाधान ढूंढ ले। उर्मिला के चरित्र में व्यापकता का अभाव है, उसमें वह उदात्तता नहीं जिसकी अपेक्षा हम उस जैसी नारी से करते हैं। उसकी विरह वेदना आत्म केंद्रित है, उसमें विस्तार की कमी है। फिर भी उर्मिला का व्यक्तित्व समादरणीय है। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है।